अंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह सात गो गणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंद मूले तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय शब्द गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च सागर जातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधोर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दीजिए और जो भी माताओं के छोटे बच्चे उनसे अनुरोध है उनके ऊपर ध्यान दे ताकि वो शोरगुल ना करें। और जो भी भक्त बाहर सेवा में है या अपने बच्चों को कोई माताएं संभाल रही है तो FM 108 चालू है।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन से शिक्षाएं हम ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी शिक्षा पर हम हैं। गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु भगवान ने गोवर्धन लीला करी और हमारे पिछले कुछ सिटिंग्स में हम गोवर्धन जो लौल्यम का महत्व है वो हमें सिखा रहे हैं कि उनका सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा इसके लिए। तो लौल्यम की परिभाषा क्या है? जब हमारा सर्वस्व केवल भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए हम न्योछावर कर दें उसे कहते हैं लौल्यम। जैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रेम की परिभाषा दी लव। प्रभुपाद कहे कि ये जो शब्द है प्रेम ये केवल भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद सेड लव मीन्स टू रिपोज अवर एंटायर अफेक्शन अनटू वन पर्सन जो कि इस संसार में संभव नहीं है। इसलिए आजकल ये प्रेम शब्द को इतना सस्ता बना दिया गया है कि जब कोई कहता है आई लव गॉड तो उसके साथ साथ ये भी कह देता है आई लव माई डॉग ऑल्सो इक्वली। तो कुत्ते के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल किया गया है, भगवान के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल किया गया। ये भौतिक संसार के लिमिटेशंस हैं। हमारे पास गिने चुने शब्द हैं, लैंग्वेज हमारी बहुत लिमिटेड है, परंतु फीलिंग्स का यदि मापदंड किया जाए तो प्रभुपाद कहे कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमेव योग्य व्यक्ति हैं प्रेम शब्द को अपने संदर्भ में इस्तेमाल करने हेतु। तो लौल्यम या वो एंथुजियाज्म केवल उत्साह नहीं, लौल्यम ये शब्द हमारे आचार्य इस्तेमाल करते हैं कि गोवर्धन ये दर्शा रहे हैं कि उनका हर एक क्षण, उनके जीवन का हर एक पहलू सेवा। कल मुंबई के कुछ भक्त आए थे, मैं उनको बता रहा था, यदि एक भक्त, शुद्ध भक्त को पूछा जाए कि क्या सेविंग्स हैं आपके, जैसे कोई अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है या कोई धन कमा रहा है तो सेविंग्स पूछा जाता है उसके, बैंक बैलेंस या सेविंग्स क्या है। तो अगर एक शुद्ध भक्त को पूछा जाए कि पूंजी क्या है आपकी, क्या खजाना है आपने इकट्ठा किया, तो एक शब्द है सेवा। एक भक्त का खजाना क्या है? सेवा। वो सेवा उस भक्त के जीवन से यदि निकाल दो, यदि किसी प्रामाणिक भक्त को सही रूप से कोई अपमानित करना चाहता है, नहीं करना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश तो उसकी अगर सेवा छीन ली जाए तो वो एक प्रामाणिक भक्त के लिए सबसे बड़ा इंसल्ट है। अब हमारी स्थिति उल्टी है, हमको कोई सेवा में लगा दे तो हमको इंसल्टिंग लगता है, मुझे क्यों बोल रहे हो। एक प्रामाणिक भक्त के लिए उसकी सेवा निकाल दो, वो उसके लिए सबसे बड़े इंसल्ट है। तो एक प्रामाणिक भक्त की पूंजी क्या है? तो कल मैं बता रहा था कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए ऐश्वर्यशाली रहता है, फिर अचानक कुछ कारणवश बैंकरप्ट हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में भी, वर्तमान में भी, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोग बैंकरप्ट हो गए, कंगाल। तो भक्त के जीवन से सेवा, सेवा रहित वो हो जाए, है ना, संसार में रिटायर्ड व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेवा निवृत्त, कि उसको निवृत्ति प्राप्त होती है जब सेवा से छूट गया, सेवा निवृत्त। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रिटायरमेंट है क्या? ये क्वेश्चन, इज देयर रिटायरमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? एब्सोल्यूटली नो। कि जितना भक्त अपने आप को प्रगत भक्त कहना चाहता है या क्लेम करना चाहता है, कैसे समझ में आएगा? जितनी सेवाएं उसकी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो यदि भक्ति में कोई अभी आया है, उसे अगर 3-4 सेवा प्राप्त हुई है और 15 साल बाद उसकी वो 3-4 सेवा भी चली गई, तो कई बार जो प्रामाणिक भक्त नहीं, वो सोचते हैं कि एडवांसमेंट हो गया, अभी मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रामाणिक कृष्ण भावनामृत के स्टैंडर्ड के अनुसार यदि उसकी सेवा लिस्ट में से सेवाएं कम होते जा रही है, मतलब समझ लेना चाहिए कि गड़बड़, ठीक नहीं चल रही है भक्ति, बैंकरप्सी आ रही है, कंगाल हो रहा है वो भक्त। तो इसलिए ये लौल्यम हम कैसे हमारे अंदर उसको पैदा करें और फिर उसको बरकरार रखें। तो हमने ये जो 6C फॉर्मूला चॉइस चैलेंजेस कमिटमेंट कैरेक्टर क्लैरिटी और कंट्रीब्यूशन की लौल्यम को हम केवल जो माइंडलेस इमेच्योर स्पोरैडिक एंथुजियाज्म जिसको बोलते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। दैट एंथुजियाज्म विच हैज सब्सटेंस इन इट, वो उत्साह, वो लौल्यम जिसके अंदर कुछ तथ्य है और उस तथ्य युक्त लौल्यम के इंग्रेडिएंट्स हैं। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर अवर सब्सटेंशियल एंथुजियाज्म। तो हमने हमारे पिछले सिटिंग में कमिटमेंट वर्सेस कैरेक्टर ये मुद्दा शुरू किया था डिस्कस करने, और इसमें हमने ये टॉपिक लिया था अफ्रेड टू स्टे अफ्रेड टू लिव। कृष्ण भक्ति में कई बार एक हम ऐसे स्थिति पर आ जाते हैं कि दुविधा मन स्थिति, भौतिक इंद्रिय भोग को छोड़ना है या छोड़ चुके हैं कुछ हद तक, परंतु पकड़ यहां पर भगवान के प्रेम की अभी तक आई नहीं है। तो वो जो बीच में हम लोग हैं उसमें कई बार ये प्रश्न उठता है अफ्रेड टू स्टे अफ्रेड टू लीव। और इसमें हमने श्री वैष्णव आचार्य ये उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता स्थापित करना जैसे कि पति पत्नी संबंध में जुड़ते हैं उसके समान है। हाल ही में मैं लंदन में एक दंपति को काउंसलिंग दे रहा था, हमारे ब्रह्मचारी के साथ मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा था इसके विषय में। तो जिस दिन मैं निकल रहा था उसके एक रात पहले ये कपल मेरे पास आए और अपनी समस्याओं को सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। हस्बैंड की शिकायत वाइफ को लेकर, वाइफ की शिकायत हस्बैंड को लेकर, वाइफ की शिकायत कि जो मेरा पति है वो सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है इसके अंदर मेरी स्थिति के प्रति, ही इज नॉट थॉटफुल अबाउट मी, इज केयरलेस। पति की शिकायत शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, मेरी मजबूरी नहीं समझती है, शी इज बीइंग इनसेंसिटिव बाय बीइंग नॉट अंडरस्टैंडिंग। इनका अलग फ्लेवर था शिकायत का, तो काफी सीरियस मैटर था। दोनों बहुत स्पिरिचुअली अच्छे स्टैंडिंग में हैं, फिलोसॉफी अच्छे से जानते हैं, काउंसलर हैं वहां के, ऐसा नहीं कि कोई तुट्टे मुट्टे कल के कोई भक्त हैं, काउंसलर। तो उनके एक एक पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स वो प्रस्तुत कर रहे थे, बराबर का मैच चल रहा था, यहां से टाई ब्रेक हो रहा था, बराबर का मैच चल रहा था। तो 8 साल हो चुके हैं उनके विवाह को, एक लड़का भी है उनको। तो एक एक कर उन्होंने जो जो पॉइंट्स प्रस्तुत किए कि इस दिन इसने ये किया मेरे साथ, उस दिन उसने ये किया मेरे साथ, याद है तुमको? वो तो याद रहेगा नहीं तुमको। हाँ तो तुमको कौन सा याद है? इस प्रकार से दोनों तरफ से। तो मैंने कहा एक मिनट, आप ये जो डिटेल्स में जा रहे हैं कि कौन से दिन, यहां पर कोई कोर्ट कचहरी की कार्यवाही नहीं चल रही है कि आप सब एविडेंस प्रस्तुत करो कि डेट टाइम के साथ इस दिन इस समय तुमने ये गुनाह किया था और मैं चश्मदीद गवाह हूं। डोंट स्पीक द लीगल लैंग्वेज। अक्सर होता क्या है, जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हम लोग लीगल लैंग्वेज इतना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा, 8 साल पहले जब आपने निर्णय लिया कि आप एक दूसरे के जीवन साथी बनोगे, ये आपकी स्वयं की इच्छा थी? बंदूक के नोक पर तो आपको नहीं कहा गया था इससे शादी कर, यू डिसाइडेड योर फ्री विल कि भाई ये व्यक्ति मेरा जीवन साथी बनना चाहिए। हाँ, दोनों ने एडमिट किया, हाँ ये बात सच है, हमारी स्वयं की इच्छा से हमने ये चयन किया। तो मैंने कहा उस समय आपने एक दूसरे के अंदर कुछ गुण देखे होंगे तभी डिसीजन लिया, तभी डिसीजन लिया ना आपने। तो यार डेफिनेटली हमने बहुत से गुण एक दूसरे के अंदर देखे, मिलाए भी, मिले भी 36 गुणों में से, कितने सारे पहले मिलाना पड़ता है। तो थियोरेटिकली पहले मिलाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकली मिलाना पड़ता है। हाल ही में एक व्यक्ति मुझे एक प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक हमारे इस्कॉन के कांग्रीगेशन डिवोटी के लड़के, ये 2015 की बात है, उनका विवाह हाल ही में हुआ है और उन्होंने विवाह के दिन अपनी पत्नी को देखा पहली दफा। ऐसा भी होता है आजकल। तो मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि लड़के ने अपनी मां से कह दिया कि जो आपकी चॉइस होगी मैं उससे शादी कर लूंगा 2015 में, पढ़ा लिखा बंबई शहर का। तो मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, आपका मत क्या है? तो मैंने कहा देखिए, एक तरीके से थोड़ा अगले व्यक्ति को इंसल्टिंग भी लगेगा ना, कि मान लो कि लड़के ने जिससे भी शादी की तो वो जो भी लड़की, उसको क्या लगेगा इस जीवन भर कि भाई मैं तो तुम्हारी मां की चॉइस थी। तुरंत पहली दफा हम सुनते तो हमको कितना एक एप्रिसिएशन आता, भाई ऐसा भी इतना डिटैच्ड कोई आदमी है, मेरे पास इतना डिटैच्ड है तो शादी क्यों कर रहा है। मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन वो फेरे ले रहा है उसके साथ, कि अगर 3.5 फेरे के बाद मां बोल दे कि चेंज करना है तो ठीक है चेंज कर दो। तो मतलब कोई अंदर कमिट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या एकदम जैसे ब्रह्म ज्योति टाइप एटमोस्फेयर है ये। तो मैं बोला आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस काइंड ऑफ डिटैचमेंट, सो कॉल्ड डिटैचमेंट। हाँ, अगर तुम पूरे जीवन भर उतने डिटैच रह पाओ और कोई शिकायत न करो, एकदम मुंह बंद, शिकायत नहीं दोनों की एक दूसरे के प्रति, तो फिर ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं। परंतु अगर 2 साल 3 साल बाद आप शिकायत का भंडार बन जा रहे हो और लिस्ट लेकर बोल रहे हो कि अरे ये तो ऐसे निकली, अरे ये तो ऐसा निकला, फिर कहेंगे क्या, मैंने तो वैसे भी चुना नहीं था तुमको, मेरी मां ने चुना था। तो फिर वहां से शिकायत यही कि भाई मां भी तो तुम्हारी ही है। तो पॉइंट ये है कि मैं, ये तो थोड़ा साइड पॉइंट हो गया, तो मैं जब इनको काउंसलिंग दे रहा था थोड़ा, तो मैं इनको कह रहा था कि जब आप उस आपके शादी के समय या शादी से पहले जो आपने गुण देखे एक दूसरे के अंदर, वो गुण अभी भी हैं आप दोनों के अंदर, आप फोकस नहीं कर रहे उसके ऊपर, जस्ट रीलिव योर दोज डेज व्हेन यू चोज ईच अदर, जस्ट रीलिव दोज डेज, बस इतना ही करना है, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और उन्होंने एक हफ्ते बाद व्हाट्सएप, दोनों ने अलग अलग तरीके से किया, प्रभु जी एवरीथिंग इज बैक टू दोज लवली रोमांटिक डेज ऑफ आवर्स बिकॉज इट वॉज यू नो समथिंग विच यू आर मिसिंग आउट इन अवर मैरिड लाइफ, वी वेंट बैक टू बेसिक्स। तो पूरे काउंसलिंग का टॉपिक क्या था, गोइंग बैक टू बेसिक्स। तो मैं कह रहा था हमारे ब्रह्मचारी को कि भक्ति में भी हम एज अ साधक 6 साल 8 साल बाद हमारी भी स्थिति क्या होती है, शिकायत की लिस्ट लेकर घूमते फिरते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, या उनके प्रतिनिधि ठीक से नहीं कर रहे, सिस्टम में गड़बड़ है, फिलॉसफी मेरे को लग रहा है कि वो पक्की नहीं है, ये वो कितनी सारी शिकायतें। परंतु यदि हम उस दिन को याद करें जिस दिन हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की इस लाइफस्टाइल जीवन शैली से पहला प्यार किए थे, उस दिन को याद करें, किसी ने हमें भी बंदूक की नोक पर नहीं कहा था जप करो या मंदिर आओ या भगवान श्री कृष्ण को चुनो आराध्य देव के रूप में, हमने वी चोज कृष्णा, वी चोज डिवोटीज, वी चोज दिस टेम्पल, तो हमने कुछ गुण देखे होंगे। तो हमें करना क्या है, जब भी हमारा लौल्यम उस प्रकार से कम हो जाए, रिमेंबर दोज initial days, relive those initial days when you were madly attracted to devotees, ऐसे अंदर हम सब के अंदर वो दिन थे, आपके अंदर अभी भी होंगे, कि जब अंदर ऐसे उत्कंठा, कब मंदिर जाना होगा, कब भक्तों का संग, कब वो लेक्चर सुनना, कब वो मंगल आरती, कब वो दर्शन, वो यात्रा, अंदर जो एक बहुत ही मीठी उत्कंठा, हाँ आपने अनुभव किया उस नहीं, तो हम यही कह रहे थे कि हमें यदि उसे मेंटेन कर रखना है, तो हर समय अपना भक्ति का कैसेट रिवाइंड कर वो दिन पर जाना चाहिए, जब भी हम डाउन, डिप्रेस्ड, उदासीन बाबा बन जाए। कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, तो वो दिन याद करो, वो दिनों को याद करो जिन दिनों मेरे अंदर 5 किलो खून बढ़ा हुआ था भक्ति करने के लिए। रीलिव, गोइंग बैक टू बेसिक्स, बस उतना ही करना है। तो किसी भी रिश्ते के अंदर, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गॉड ब्रदर का हो, ब्रह्मचारी का एक दूसरे के साथ हो, गॉड सिस्टर का हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन, कोई भी रिश्ता, वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। बस द सॉल्यूशन इज विद इन अस। वी क्रिएट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज ऑल्सो विद इन अस। तो इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में रुक्मिणी कृष्ण कल्याण कि ये जो प्रसंग, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब देखो इतने सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को कभी देखा नहीं, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं, केवल रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किया। और ऐसा श्रवण कि उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने की जो उत्कंठा, लालसा इतनी तीव्र हो चुकी थी कि एक स्त्री और जिसका विवाह फिक्स हो चुका है शिशुपाल के साथ, पिता भाई सबके बीच में रहती हुई वैदर्भी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को चुनती है। पहले अपने मन में, सबसे पहले अपने मन में, और फिर वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना प्रस्ताव रखती है। और ऐसा प्रस्ताव जो उन्होंने वो पत्र लिखा, इस प्रकार से अपनी प्रार्थना, याचना वो भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती है कि रुक्मिणी देवी की तीव्रता के वजह से उन्होंने भगवान को अपनी ओर खींचा। पहले भगवान को अपनी ओर खींचा कि भगवान द्वारका छोड़कर रुक्मिणी का हरण करने के लिए आए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट अ प्योर डिवोटी लाइक रुक्मिणी फर्स्ट किडनैप्स कृष्णा एंड allows Krishna to kidnap herself. यह साधना भक्ति, कि हम ऐसी भक्ति करें कि भगवान आतुर हो जाएं, हमसे आकृष्ट होकर भगवान इतने ज्यादा हमारे निकट आ जाएं कि फिर भगवान हमको अपनी ओर खींच ले। पहले भगवान को खींचना, फिर भगवान हमको खींचे। टग ऑफ वॉर, क्या ये उस प्रकार का टग ऑफ वॉर, स्पिरिचुअल टग ऑफ वॉर। तो रुक्मिणी, इनका जो विवाह हुआ बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से, आजकल तो आए दिन ये बॉलीवुड की पिक्चरों में ये सब दिखाया जाता है ना, एकदम फिल्मी प्लॉट लगता है ना। फिल्मों ने ये सब शास्त्रों से उठाया है, ओरिजिनल जो हमें शुद्ध करने वाला ये प्लॉट, कि जहां रुक्मिणी देवी का विवाह फिक्स हो गया है, सब कुछ कार्ड बट चुके हैं और रुक्मिणी देवी को विवाह नहीं करना है शिशुपाल के साथ, और यहां पर तो भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल जो कि बचपन से जिसको विलन मानता है भगवान श्री कृष्ण को, रुक्मिणी को उससे विवाह करना, और इंटरेस्टिंग हो रहा है ये प्लॉट। और ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग में ही बता दिया गया, नहीं, सगाई हो गई, अब शादी का दिन, मुहूर्त निकल चुका है, उस समय भाई अगेंस्ट है, पिता लाचार है, और जो होने वाला पति है शिशुपाल, वो निकम्मा एक नंबर का, वो असली विलन। और इन सब के बीच में भगवान ने रुक्मिणी हरण किया। रेवोल्यूशनरी है, इसलिए कृष्ण भक्ति भी उसी प्रकार से है। हम देखेंगे एक एक पहलू, हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो रेवोल्यूशनरी। तो सबसे पहले रुक्मिणी देवी की तुलना हमसे की गई, साधक से, लिविंग एंटिटी। भगवान श्री कृष्ण हमारे असली पति होने चाहिए। रुक्मी कौन है? रुक्मी रुक्मिणी का जो भाई, जो कि अगेंस्ट है इस शादी के, रुक्मिणी की शादी भगवान श्री कृष्ण से, उसके अगेंस्ट रुक्मी, तो ये है हमारा ही भाई, हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये कौन है? हमारा मन है ना, हमारा ही संगी है ये, और हमारे ही अगेंस्ट षड्यंत्र रचता रहता है बैठा बैठा, इसको हम ही खिलाते पिलाते रहते हैं, और ये हमारे ही अगेंस्ट षड्यंत्र रचता रहता है अंदर में। सो रुक्मी इज लाइक दी अनकंट्रोल्ड माइंड, शिशुपाल इज कंपेयर्ड टू दी फाइव सेंसेस। तो शिशुपाल को ये हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उसकी तुलना शिशुपाल से क्यों की गई है? क्योंकि रुक्मी तो रुक्मिणी का भाई था, तो अड़चनें आती हैं अंदर से, आंतरिक रूप से और बाह्य दोनों। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाह्य अड़चनें डालती हैं, और अगर बाह्य रूप से आप इंद्रिय भोग में नहीं लगे हो तो अंदर से रुक्मी वो परेशान करता है। बाहर से इंद्रियां, अभी जो कृष्ण भक्ति में नहीं है उनकी स्थिति क्या है? अंदर से बाहर से सब रुक्मी शिशुपाल उन्हीं के साथ रचे पचे घूम रहे हैं वो लोग। हम लोग यहां पर रुक्मिणी की तरह अभी तक शिशुपाल से विवाह नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी होगा तो तलाक दे दिया शिशुपाल को। और जो रुक्मी है, रुक्मी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदर ये अंदर बाहर का जो ये द्वंद्व है ये चलता रहता है हमारे अंदर। सो रुक्मी इज ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम इनसाइड, शिशुपाल इज ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड। ये स्थिति है रुक्मिणी की और ये स्थिति है हम सब की। तो भीष्मक कौन है? भीष्मक जो कि पिता है रुक्मिणी के, वो है वीक इंटेलिजेंस। भीष्मक चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, शिशुपाल से ना हो। तो हमारी बुद्धि हमको बीच बीच में धीमे आवाज में कहती रहती है, प्रभु जी ठीक नहीं है, प्रभु जी ये मत खाओ, ये मत देखो, प्रभु जी ये शिशुपाल है। परंतु भीष्मक, उनके अंदर वो इतना जोश नहीं था, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने बेटे रुक्मी और शिशुपाल का मुंह बंद कर सके। तो कई बार हमारी ये जो कमजोर बुद्धि है, ये हमारी कमजोर बुद्धि भी भीष्मक की तरह, नियत अच्छी है परंतु शक्ति नहीं है, वीक भीष्मका वी हैव इनसाइड अस। लाचार बुद्धि के साथ कई बार भक्ति करते रहते हैं कि गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, जानते भी हैं परंतु लाचार। तो ये भीष्मक का उदाहरण। और इस दौरान रुक्मिणी देवी जो ओरिजिनल प्रेम पत्र लिखती हैं, वो है याचना कि अब तक भगवान आए नहीं हैं। रुक्मिणी ने अपनी याचना प्रस्तुत की, अपना प्रयास दिखाया कि यस कृष्णा, आई वांट यू ओवर एनीवन एल्स एंड एवरीवन एल्स। तो हमारे हाथ में है क्या? हम भी लाचार हैं, कमजोर हैं, रुक्मिणी भी जैसे लाचार थी। हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम हमारी याचना भगवान तक पहुंचाएं। तो याचना भगवान तक कौन पहुंचाएगा? एक शुद्ध भक्त। जब हम शुद्ध भक्त, जैसे हम जो पुजारी हैं, पुजारी जब कुछ ऑफरिंग भगवान को करते हैं तो वो डायरेक्टली भगवान को ऑफरिंग नहीं कर सकते। हम गुरु परंपरा के थ्रू, शुद्ध भक्तों के थ्रू वो ऑफरिंग्स भगवान तक पहुंचाते हैं। तो वो हैं दूत, विष्णु दूत जिनको कहते हैं, या कृष्ण दूत, जो कि हमारी याचना, हमारा प्रस्ताव, हमारा एप्लीकेशन वहां तक पहुंचाएंगे। तो वो ब्राह्मण जो कि पत्र लेकर गया, वो शुद्ध भक्त। और इस दौरान जो वो सेनाएं, जब भगवान ने रुक्मिणी को किडनैप कर लिया, तो वो सारी जो सेनाएं इतना क्रुद्ध हुई, सारे हमारे आसपास के रिश्तेदार संबंधी वो लोग सब धीरे धीरे, जब वो देखते हैं कि ये कृष्ण भक्ति में बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, तो वो फिर चिंघाड़ने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, दे ट्राई टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू कृष्णा। और हर एक भक्त साधक के जीवन में ये समाज का कोई ना कोई तो होगा जो रोड़ा डालता है, अवरोध डालता है, रोकने की कोशिश करता है, डिमोरलाइज करता है कि क्यों, कितने सारे वो क्यों प्रश्न, कृष्ण ही क्यों, महामंत्र ही क्यों, ये सब क्यों, इस्कॉन ही क्यों, और हम लोग क्या प्रश्न पूछना चाहिए, इस्कॉन क्यों नहीं, कृष्ण क्यों नहीं, महामंत्र क्यों नहीं। तो एंग्री आर्मीज आर दी एंग्री सोसाइटी। रुक्मिणी को जब भगवान ने लगाम हाथ में दी, तो भगवान रुक्मिणी के द्वारा ये दर्शा रहे थे कि रुक्मिणी लगाम तुम हाथ में लो और ये सारे समाज को दिखाओ, तुमने चुना है मुझे, शर्माओ मत। अब तो भक्ति में आने के बाद हमें समाज के सामने शर्म नहीं आनी चाहिए, इसलिए रुक्मिणी के हाथ में लगाम और हमारे हाथ में बीडबैग एक समान है। कई बार भक्तों को थोड़ी शर्म आती है बीडबैग हाथ में लिए कि समाज देखेगा, जो मुझे जानता है, नहीं भी जानता है तो वो लोग कैसे घूर कर देखते रहते हैं इसके हाथ में क्या है। मेरा स्कूल का फ्रेंड बंबई में मुझसे मिलने आया तो मुझे पूछ रहा था, हम लोग प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो मुझे पूछता है, यार तू ऐसे निकल गया बाहर ये सब पहन के, मेरे साथ बैठा है तू, मुझे शर्म आ रही है, तुझे नहीं आ रही? क्योंकि इस पोशाक में, इस अवतार में उसने मुझे कभी देखा नहीं था। तो हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, बैंड्रा क्रॉस कर रहे थे, तो पूछा उसने, ऐसे तू बैठ गया ये सब पहन के मेरे बगल में, तो लगता नहीं कुछ इसे, लोग क्या कहेंगे। तो देखो भगवान कैसे टाइम पर इंडिकेशंस देते हैं। तो जैसे ही उसने ये बात कही, मेरी नजर पड़ी बड़ा बिलबोर्ड, वो बैंड्रा के वहां पे लगाया हुआ था। तो बड़े बड़े बिलबोर्ड बॉम्बे में होते हैं, बड़ा बिलबोर्ड बॉम्बे में बैंड्रा में वहां लगाया हुआ था, वीआईपी फ्रेंची अंडरवेयर, आदमी खड़ा है अंडरवेयर में। तो मैंने दिखाया, इसको शर्म आ रही है। पूरे बंबई के सामने जांगी में खड़ा है ये। हम दोनों को देखने में भी शर्म आ रही है, इसको नहीं आ रही। हाँ वो तो बात, मैंने कहा कम से कम पूरे कपड़े तो पहने हैं मैंने। तो भगवान ने जब रुक्मिणी देवी को कहा कि लगाम तुम्हारे हाथ में लो, सो कृष्णा वॉज इंडिकेटिंग थ्रू रुक्मिणी, इफ यू हैव चोजन मी, डोंट बी अशेम्ड ऑफ चूजिंग कृष्णा, डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दैट्स द टेस्ट। और भगवान हमें इस प्रकार के टेस्ट देते रहेंगे। इसलिए रुक्मिणी देवीज मैरिज इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और भगवान ने देखो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है कि रुक्मिणी एक स्त्री और रुक्मिणी को किडनैप करने के बाद भगवान रुक्मिणी को सारथी बनाए और अर्जुन जो कि एक क्षत्रिय पुरुष उसके सारथी भगवान बने, है ना। मटेरियल लॉजिक के अनुसार उल्टा होना चाहिए ना, कि भगवान एक पुरुष एक स्त्री के सारथी भगवान बनने चाहिए थे। तो क्यों ऐसा? क्योंकि अर्जुन की स्थिति को सुधारने के लिए भगवान सारथी बने और रुक्मिणी की स्थिति को सुधारने के लिए रुक्मिणी को सारथी बनाया। तो हमारे आचार्य डायरेक्टली इसका कोरिलेशन नहीं कर रहे हैं, परंतु अलग अलग जगहों पर जो उन्होंने टीकाएं दी हैं तो उसको कोरिलेट कर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भगवान इंडिविजुअली अपने डिवोटीज के साथ डील करते हैं। जस्ट बिकॉज कृष्णा बिकेम द सारथी फॉर अर्जुन डजंट मीन ही विल बिकम सारथी फॉर एवरीवन। तो अर्जुन के लिए भगवान सारथी बने और अर्जुन को भगवान ने ये दिखाया कि देखो, इसलिए वो जो महाभारत में वो घटना हुई कि पूरे युद्ध के पश्चात भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अब युद्ध हो चुका है, अब रथ से पहले तुम नीचे उतरो। अर्जुन अब पूरा भगवान का विश्वरूप देखे हुए थे, भगवान को पूरा पहचान चुके थे कि ये कोई मेरे खाली मित्र नहीं है, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अर्जुन फिर थोड़ा विनम्र भाव से मॉडेस्ट बनते हुए, मैं पहले, आप पहले, भगवान है आप पहले उतरिए। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं जो कह रहा हूं, जो मैंने पहले कहा वो बात को तूने सुना, युद्ध जीता ना, अभी भी मैं कह रहा हूं पहले तू उतर। तो पहले आप होता रहता ना, वैसे चल रहा था पहले। तो हुआ, हम सब जानते हैं जैसे ही भगवान बाद में उतरे तो पूरा रथ फ्लेम्स में जल गया। अर्जुन बहुत चक्कर रह गए, ये क्या। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन पूरे 18 दिन जितने ऐसे ऐसे प्रतिद्वंद्वी जो कि तुम्हें खत्म कर देते थे, मैं जानता था कि वो सब तुम्हें खत्म कर देते थे, उनके अंदर वो शक्ति थी, वो सब उनकी शक्तियों को मैंने अपने अंदर लेकर इस रथ में डाल रखा था, डाइवर्ट कर दिया था उन सबको मैंने, और वो सब उनकी विध्वंस शक्ति को मैंने रथ के अंदर डाल रखा था। दैट्स हाउ कृष्णा वॉज प्रोटेक्टिंग अर्जुन, एंड दिस इज हाउ कृष्णा वॉज प्रोटेक्टिंग रुक्मिणी। सो हाउ कृष्णा विल प्रोटेक्ट इज वेरी मिस्टीरियस। कई बार हमको लगेगा कि अरे मेरे जीवन की ये समस्या, मैं भगवान के पास जाऊंगा, याचना करूंगा, तो भगवान ये मेरी समस्या खुद व्यक्तिगत रूप से सॉल्व कर देंगे। कई बार भगवान कहेंगे लगाम तुम हाथ में लो, लगाम भगवान हमारे हाथ में देंगे। और हां, कई बार ऐसा भी होगा कि भगवान लगाम हाथ में लेंगे, लेकिन वो कब कैसे होगा, गोविंद इच्छा, गोविंद इच्छा। तो हमने ये जो 8 अलग अलग कारण शुरू किए थे कि हां भगवान से रिश्ता हमारा, हमें स्थापित करना है, परंतु फिर जैसे हम रिश्ता स्थापित कर देते हैं फिर बाद में हमारे कंप्लेंट्स, ही डजंट हेल्प मी इन माई हाउस होल्ड चोर्स, ही डजंट हैव टाइम फॉर मी, ही डजंट फुलफिल ऑल ऑफ माई डिजायर्स, हिज बिहेवियर इज इनकंसिस्टेंट, ही एक्सपेक्ट्स मी टू बी ग्रेटफुल, ही हैज वियर्ड फॉर्म्स एट टाइम्स, ही फेवर्स माई को वाइव्स मोर। और 8वां कारण, आफ्टर ऑल I chose him। तो अब तक कितने कारण हमने ले लिए इसमें से? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। तीन हमने ले चुके हैं हम, आज हम चौथे पर हैं। My husband's behavior is inconsistent। अर्थात एक साधक भगवान के इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये इनकंसिस्टेंसी किसके संदर्भ में है? रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन के संदर्भ में है। जैसे जब घटोत्कच का वध हुआ, घटोत्कच ये कौन थे? भीम के पुत्र। तो जब घटोत्कच का वध हुआ या घटोत्कच का वध करवाया गया, अगर हम इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करें, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भीम कंफ्यूज हुए। भीम कौन है? एक पांडव भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो कंफ्यूज हुए कि ये क्या, मेरा बेटा मरा है तो ये खुश हो रहे हैं। तो कई बार हम भी भीम की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मैं लोन के अंदर दबा हुआ हूं, बनती नहीं किसी भक्त के साथ, और इनके सामने आता हूं तो ये तो अपना बस हंसते रहते हैं। कई बार ज्यादा मेरे को देख के मुस्कुराते हैं। Why Krishna doesn't come to alleviate me from my misery right now? अंदर ही अंदर हम ये प्रश्न कई बार भगवान के सामने आके पूछते रहते हैं, क्यों भगवान मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं आपको, मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूं। मेरी समस्या दिख नहीं रही। जैसे कई बार कंप्लेंट्स होते हैं ना पति पत्नी की, पहले जैसी नहीं रही। तो पत्नी भी कहती है तुम भी पहले जैसे नहीं रहे। तो कई बार हम भी भगवान के सामने आकर यही कहते हैं, भगवान वो जो 1990 के आप थे ना वो नहीं हो, नहीं वो वाला आपका फ्लेवर नहीं मिल रहा है अभी। भगवान तो वही है, परंतु भगवान रेसिप्रोकेशन बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत ही सोच समझ कर रेसिप्रोकेशन करते हैं, क्योंकि हम उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। इसलिए होता क्या है कि हमारा जो कमिटमेंट है, हम कौन से पॉइंट पर है, कमिटमेंट, तो कमिटमेंट जो है वो भगवान के इनकंसिस्टेंट रेसिप्रोकेशन के वजह से हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। जब कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आप राधा मदन गोपाल जी के सामने आए और आप बहुत ही तीव्रता से प्रार्थना कर रहे हो हाथ जोड़कर, अचानक उनके बांसुरी पे अटका हुआ एक फूल गिर जाता है। जैसे ही आपने आपकी प्रार्थना फिनिश करी, वो बांसुरी में अटका हुआ फूल नीचे गिरा। अच्छा तो ये कहना है आपका, अच्छा समझ गया, भगवान आप हो, खाली जयपुर मार्बल नहीं है ये। उस दिन सारे डिवोटी शुद्ध भक्त लगते हैं हम, है ना, पूरा मंदिर ऐसा लगता है गोलोक वृंदावन है। और हो सकता है कि जिस पुजारी ने वो फूल वहां पे अटकाया होगा वो ठीक तरीके से अंदर से नहीं अटकाया होगा, वो पंखा चल रहा है, हवा चल रहा है, पंखा वंखा मार तो थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया होगा, और वो टाइमिंग ऐसा हुआ कि हम आए भगवान के सामने, हमने हाथ जोड़कर पढ़ा, आज जैसे ही आंख खोली वो फूल गिरा, हमें लगा हमारे लिए गिरा। हो भी सकता है हमारे लिए गिरा हो, ये भी हो सकता है हमारे लिए गिरा हो, उसको भी हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उसको भी ओवर रूल नहीं कर सकते, हो सकता है हमारे लिए, परंतु हो सकता है किसी और के लिए गिरा हो, हो सकता है टेम्पल हॉल में कोई यहां वहां कोई ऊपर बैठा कहीं प्रार्थना कर रहा हो, भगवान ने उसके लिए गिराया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय हमारा कमिटमेंट, जब हमारे अनुसार कुछ बात हो जाती है तो फिर हाँ बस भगवान आप जो कहोगे, अभी सर्वधर्मान परित्यज, अभी बोलो वो श्लोक। जब हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो क्या भगवान गीता सुनाए आप, कुछ चीज काम नहीं कर रही मेरे जीवन में, जप में मन नहीं लग रहा है, प्रसाद में टेस्ट नहीं आ रहा है, खिचड़ी खिचड़ी खा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अस्पताल का दलिया खा रहा हूं। कमिटमेंट नीचे हो जाता। तो क्या है, व्हाई डू वी फियर कमिटमेंट? कमिटमेंट समझते हैं ना आप लोग सब? क्या कहेंगे कमिटमेंट? प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, समर्पण, वचनबद्धता। तो सबसे पहला कारण है हम टोटली कमिटेड नहीं होना चाहते। हम लोग कई बार सोच के आते हैं मंदिर में, इतना ही। हाँ, जैसे नए नए जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं मंदिर में तो उनके माता पिता वो जानते हैं कि हाँ भाई इसको हम थोड़ा अच्छी आदतें दिला देता है बच्चों में, तो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को पट्टी पढ़ाकर भेजते हैं, बेटा जाओ वो हरे कृष्णा मंदिर में, ऊपर 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 है ना, ऊपर ही जाना है, ऊपर भी लेक्चर आता है, ऊपर ही रहना, ज्यादा टेम्पल हॉल में ज्यादा घूमना मत, सीढ़ियां बाहर है, बाहर से ऊपर, उधर से ही बाहर, ऊपर ऊपर, ज्यादा अंदर मत जाओ। सर्फिंग, बिकम अ सर्फर, डोंट बिकम अ डाइवर। ऊपर ऊपर। तो कई बार हम भी सोच के पूरा प्लान करके आते हैं कि भगवान क्यों, क्योंकि हम लोग जो इतने जन्मों से ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट जीवन जिया हूं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि why you find such few people coming to ISKCON temples and following ISKCON program, because rules, the first thing is we are dependent, we are not independent। चुपती ये बात अहंकार को, मुझे ये कह रही हो कि मैं गुलाम हूं। राधानाथ महाराज ने जब पहला लेटर लिखा इस्कॉन में आने के बाद अपने माता पिता को, तो लास्ट में लिखा योर सर्वेंट, तो उनके पिताजी इस स्टेटमेंट से बहुत चिंतित हुए, हमने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी पढ़ाई लिखाई तेरे को कराई, सर्वेंट। नेक्स्ट लेटर में महाराज लिखते हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और टेंशन में चले गए, क्या हो रहा है ये। सो नोबडी, नन ऑफ अस, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस अवर इंडिपेंडेंस। दिस इज समथिंग विच वी चेरिश, अवर इंडिपेंडेंस। बहुत हमको उस पर फक्र होता है, फ्रीडम। सो द फर्स्ट रीजन which holds us from complete commitment is our independent mentality. और देखो, दूसरे जो कुछ पंथ हैं वहां पर आपको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम दी जाती है कि आप जो कर रहे हो करते रहो। हाँ, आप जो जप करना है वो भी करते रहो, उसके अंदर भी कोई बंधन नहीं है। और यहां पर आने के बाद जो एकदम हमारे बहुत ही सिलेक्टेड प्लेजर्स हैं उनको एक एक करके निकाला जाता है, हमारे सिलेक्टेड प्लेजर्स को। देखो, चाय, एक डिवोटी मेरे को बोल रहे थे प्रभुपाद ने चाय क्यों चुना है ना, मतलब कोई वेजिटेबल सूप कर लेते, दलिया बोल देते, चाय क्यों है? मतलब तो देखो, वो इट चैलेंजेस दोज थिंग्स विच वी थिंक इज मेकिंग मी इंडिपेंडेंट, उसको पकड़ते हैं। इसलिए डर लगता है लोगों को अपना इंडिपेंडेंस खोने से. सेकेंड रीजन, फियर ऑफ लूजिंग अवर कंफर्ट जोन, कि एक जो हमारा आराम का दायरा हमारे हम बनाए रखते हैं बचपन से लेके और इतने जन्मों से लेके, वो जो हमारा कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होता है. इसलिए हम भक्ति में भी आरामदायक भक्ति करना निर्णय लेते हैं कि आरामदायक भक्ति होनी चाहिए, उसमें ज्यादा टेंशन हम न ले. वो प्रैक्टिकल होने के नाम पर हम हमारे कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना चाहते हैं. आई एम बीइंग प्रैक्टिकल बिकॉज यू कैन नॉट बी फैनेटिकल. हाँ, बोला जाता है यू कैन नॉट बी, तुम कट्टर मत बनो. इन द नेम ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल वी टेंड टू रॉट इन आवर कंफर्ट जोन मेनी टाइम्स. This is the second reason. The third, fear of getting betrayed. Why we fear committing ourselves? क्योंकि कई बार हमने इतने धक्के खाए हैं इस संसार में, अपना सब कुछ किसी को नछावर किया, अगले व्यक्ति ने उसका गलत फायदा उठाकर हमको बिट्रे कर दिया, धोखा दिया. तो इतने धोखे हम खा चुके हैं इसलिए फिर, और कलयुग में तो बहुत आए दिन यहां वहां सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसको इसने धोखा दे दिया है, उसने उसको धोखे दे दिया, बस धोखा ही धोखा चल रहा है सब जगह, धोखा धड़ी. फियर ऑफ बिट्रेयल, सो वी बिकम अफ्रेड. लैक ऑफ ट्रस्ट इन द रिजल्ट, कि जो मुझे ओरिजिनली बताया गया था कि कृष्ण प्रेम मिलेगा और ना माइंड कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारा जप करके, पीस यू विल गेट पीस. शुरुआत में हम लोग सब आए ना कि बाहर इतने त्रस्त और बाद में यहां पर आने के बाद आई शुड गेट सम पीस. तो प्रश्न ये है, इज कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रॉमिसिंग अस पीस और द मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चन, डू वी रियली वॉन्ट पीस? एक उदाहरण से आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा. जैसे मान लो अभी मैं जो 2 महीने की प्रीचिंग टूर पर था, तो बहुत से मैंने वहां के हमारे इंडियन फैमिलीज जो सेटल्ड हैं यूके में क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनका रहन सहन, बच्चे, बाप रे एक अलग ही नस्ल पैदा हो रही है आजकल बच्चों की, इतने अंदर से पता नहीं कहां से डीएनए लेकर आए हो, ऐसा इतना हाइपर एक्टिव बच्चे, एक मिनट एक जगह पर बैठ नहीं सकते और नॉन स्टॉप. एक भक्त के घर में वो लंच ले रहे थे हम लोग सब, तो पूरा परिवार वो डाइनिंग टेबल पर था. तो एक उनकी 10 साल की लड़की, अब वहां पर ये जो दही होता है ये पैक्ड दही मिलता है, कोई घर में दही वगैरह नहीं जमाते, वो सब पैक्ड दही मिलता है, इंडिया में भी बहुत कॉमन है. तो वहां पर पर्टिकुलर कंपनी, वो बहुत सबके फेवरेट है वो दही, ऑंकेन करके वो एक कंपनी है यूके में, तो उसका दही सब लोग ले घर के अंदर सब रखते हैं. तो ये 10 साल की लड़की, इसने जो अपने पिताजी से प्रश्न पूछा, मेरा निवाला खाते खाते रुक गया वहां पर. ये 10 साल की लड़की अपने पिताजी से पूछती है, डैडी दिस ऑंकेन कंपनी इज नॉट इन इंडिया, इट मस्ट बी जस्ट इन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट इज रिटन हियर, सो इट्स नॉट इन इंडिया. सो हाउ डू दे ईट योगर्ट इन इंडिया? 10 साल की हो गई, उसे पता है नहीं कि दही जमाया जा सकता है। मेरे दिमाग का दही हो गया। कैन यू बिलीव दिस? मैंने पूछा उनके पिताजी को, यू आर टेलिंग मी शी डजंट इवन नो हाउ योगर्ट इज मेड? आई एम सॉरी बहू, इवन आई डिंट नो, शी डिंट नो। कुछ उसके कुछ साल पहले एक एकादशी के टाइम में उधर पहुंचा था, तो मुझे डिवोटीज ने बंबई से अपना मूंगफली होती शेंगदाना छिलके के साथ बॉईल करके थैली में दिया था, तो ऐसे ही मैंने लिया नहीं, तो वो मेरे बैग से बाहर निकला, तो मैंने वो डिवोटी को दे दिया कि हम बांट देना। तो उनकी छोटी लड़की 7-8 साल की, उसने देखा तो मेरे को पूछती, व्हाट इज दिस? मैंने कहा पीनट्स। दिस इज नॉट पीनट्स, पीनट्स इज नॉट लाइक दिस। व्हाट डू यू मीन दिस इज नॉट पीनट्स? तो उसने कभी मूंगफली छिलके के साथ देखी नहीं। तो मैं पूछा कि ये क्या मतलब, इनको मालूम ही नहीं कि मूंगफली क्या करे प्रभु, यहाँ पे वो छिलके के साथ मूंगफली नहीं आती, वो सब छिली हुई आती है, वो सब रोस्टेड सॉल्टेड, तो इनको मालूम नहीं है। नट्स, दे डोंट नो अबाउट नट्स। मैं बोला इट्स ड्राइविंग मी नट्स। तो मैं ये कह रहा था कि क्या पॉइंट पे था, पीस पीस। हाँ, तो बच्चे, अभी मान लो कि किसी के बच्चे, कई तो कपल्स मुझे आकर बोले कि प्रभु जी ये मेरा बेटा इतना ज्यादा शरारती है, और कोई बहुत ही एडमायरेबल तरीके से शरारती नहीं है, ही इज लाइक अ मॉन्स्टर। पिताजी बोल रहा है ही इज लाइक अ मॉन्स्टर, माय सन, समटाइम्स आई एम सो फेड अप एंड इरिटेटेड, आई कर्स, व्हाई डिड आई गिव हिम बर्थ। तो मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि मान लो माता पिता अपने बच्चों के शरारत के वजह से इतने परेशान अगर हो जाएं कि उनको चाहिए जस्ट गिव मी अ ब्रेक, दिन भर काम करके आया हूं और तू फिर से लग गया चैं 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 चैं, गिव मी अ ब्रेक। तो मैंने तो थोड़ा एनालाइज किया कि मान लो अगर वो जिसके वजह से इतना परेशान है, और दोनों माता पिता बच्चे की शरारत को लेकर जो घर के अंदर उसने कोलाहल खड़ा कर रखा है अपने आवाज से शरारत से, खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चा खत्म हो जाए, कितना पीस रहेगा ना घर पे, शांति, everything will be peaceful, no noise, no mischief. Will the parents like that peace? Never. वो क्या कहेंगे कि चाहे वो कितनी भी शरारत करे, कितनी भी आवाजें करें, कितना भी मुझे सरदर्द दे, जिंदा रहे वो। This is भक्ति। भक्ति मीन्स वी हैव नॉट कम हियर फॉर दैट पीस, वी हैव कम फॉर सेवा। सेवा मीन्स एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मीन्स हेडेक, हेडेक मीन्स टेंशन, टेंशन मीन्स स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स बीपी अप एंड लो, वर्क हली. तो वृंदावन में भगवान ने ब्रजवासियों को कोई ओम शांति शांति का सूत्र या मंत्र नहीं दिया. इसलिए आप आज भी ब्रज में जाओ तो सब जगह पर श्री राधे लिखा होता है. श्री राधे मीन्स राधा रानी हर समय सेवा में लगी रहती है. सेवा मीन्स जो जो अभी हमने चर्चा की. कहीं पर भी पेड़ पे नहीं लिखा हुआ है ओम शांति. वृंदावन में नहीं पढ़ोगे आप. वृंदावन इज अ प्लेस फॉर सेवा. एंग्जाइटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स सेवा. भगवान के लिए हम जितने अलग अलग प्रकार, चाहे वो सरदर्द हो चाहे पीस हो, इट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट पीस. ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्णा में हम लोग एंटी पीस हैं. शांति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अगर कोई शांति से जप कर रहा है, प्रभु जी आप शांति से जप कर रहे हैं, उसको जाकर कोई सुई चुभो चुभो कर थोड़ा एंग्जाइटी लाऊं तुम्हारे जीवन में. सो कई बार हमको जब हमारे अनुसार वो रिजल्ट नहीं मिलता, लैक ऑफ रिजल्ट, सो वी स्टार्ट डाउटिंग. वी डाउट वेदर वी शुड कमिट. फियर ऑफ चेंजिंग अवर प्रेजेंट सिचुएशन. अभी हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो हमने इस प्रकार से प्रेजेंट सिचुएशन बना रखी है, उसको हमने सजा रखा है, संजो रखा है, कि उसके अंदर कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए. जैसे मान लो हमारा ऑफिस टेबल है या जो भी हमारा घर में हमारा रूम है, वो हर समय रोज चेंज होता रहे. उसके लोकेशन, घड़ी का लोकेशन बदल गया, पेन जहां रखते हैं वो बदल गया, हर समय हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या चल रहा है. वी वॉन्ट एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस, देन आई कैन वर्क, है ना. एवरीथिंग शुड बी इन इट्स ओन प्लेस. जैसे मान लो कि कोई ऑफिस जा रहा है, उसका रोज ऑफिस बदल रहा है, यहां से वहां यहां से, उसको रोज बताया जा रहा है आज तुम्हारा ऑफिस सातपुर में है, कल तुम्हारा ऑफिस सिन्नर में है, अच्छा परसों तुम्हारा ऑफिस संगमनेर में, उसके बाद तुम्हारा ऑफिस बंबई में है. ये कहां जा रहा है? पता लगा एक हफ्ते बाद ऑफिस कन्याकुमारी तक पहुंच गया. लेकिन अगर उसे बताया जाए भाई ये तुम्हारा ऑफिस है, फिक्स्ड है एवरीथिंग, तो हाँ भाई ठीक है, अब अच्छा लग रहा है काम. तो वैसे ही हम लोग क्या है, इस संसार में हम लोग हर समय सेटल होने की कोशिश करते रहते हैं. आप देखो जानवरों में भी, उनको थोड़ी सी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर खाना पीना दाना पानी कहीं मिल रहा है, घोंसला बना लेती है चिड़िया. कुत्ते खोद के बैठ जाते हैं वहां, ये मेरा रो हाउस है. वहां पे थोड़ी पेड़ की छांव और ये वो एक दो रोटी डबल रोटी वगैरह मिल गई, वहां से खोद के वहां पे वो आप देखो खरगोश हैं या चूहे हैं, बिल बना बना के क्या कर रहे हैं, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं. सब लोग चींटियों को देखो, अपना एंट हिल बना के सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग उनको देख के बोलते हैं क्या है ये, और देवता ऊपर से हमको देख के बोलते हैं. हम जब अपना अपनी बनाते हैं तो वो भी हमको देख के हंसते हैं, कर ले भाई कितने साल करेगा. तो हम भी सेटल होने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही कृष्ण भक्ति में कुछ ऐसी चीजें हो जाती, जब हमको भगवान अनसेटल करते रहते हैं. भगवान ऐसे हैं कि ऐसे मास्टर हैं कि अपने सर्वेंट को एक जगह पर वो सड़ने नहीं देते. एक्टिव, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. इसलिए हर समय यहां से वहां यहां से. लेकिन अगर हम मैच्योर नहीं है तो हमको वो थोड़ा ये लगता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब भुवनेश्वर में थे तो गौर गोविंद महाराज जो कि बहुत ही एडवांस्ड ऐसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य उनको मिले कि प्रभुपाद गौर गोविंद महाराज को अपना शिष्य मानकर फक्र महसूस कर रहे थे। गौर गोविंद महाराज का अगर आप बायोग्राफी पढ़ो तो जो बचपन से एक गौड़िया वैष्णव परिवार में पैदा हुए और भक्ति जो बचपन से उन्होंने की, बहुत ही स्पेशल प्रभुपाद के डिसाइपल रहे गौर गोविंद महाराज। तो प्रभुपाद ने गौर गोविंद महाराज को कहा, भुवनेश्वर का इस्कॉन मंदिर अब थोड़ा सा खुला ही था सेंटर वहां पर, और गौर गोविंद महाराज वहां के इंचार्ज थे। तो प्रभुपाद ने गौर गोविंद महाराज को कहा, यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग माय बुक्स इन उड़िया। वो वहां के थे उड़ीसा के। तो गौर गोविंद महाराज बोले, बट प्रभुपाद हु विल मैनेज द टेम्पल, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट माय 16 राउंड्स एंड मैनेजिंग दिस होल टेम्पल। तो उस समय प्रभुपाद को अपने बुक्स को अलग अलग ये लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराना था, वो प्रायोरिटी था प्रभुपाद का। लेकिन अब ये मंदिर को भी मैनेज करना है, कोई मैन पावर नहीं है, कोई ऐसे मैच्योर डिवोटी नहीं, मैनेज कौन करेगा। तो जब गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद को कहा कि आप मुझे ट्रांसलेशन का काम दो रहे हो लेकिन मैनेज कौन करेगा, उसी समय एक डिवोटी अपना प्रसाद का प्लेट लेके जा रहा था, अमेरिकन डिवोटी। तो प्रभुपाद ने बोला, हरि बोल, कम हियर। तो कई बार ऐसा होता है कि ना, जब कोई डिवोटी प्रसाद का प्लेट लेके जा रहा है उस समय अगर कोई उसको सीनियर डिवोटी बुला ले या सर्विस इंचार्ज टाइप बुला ले तो टेंशन आ जाता है कि समय क्यों बुला रहा है, कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं करने वाला है। तो प्रभुपाद और वो भी गौर गोविंद महाराज के साथ बैठे हुए हैं, मतलब मैनेजमेंट की बात चल रही है और उस टाइम मेरे को बुलाया, तो ये डिवोटी अमेरिकन डिवोटी को प्रभुपाद ने बुलाया, हरि बोल, कम हियर, आए। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव टू बिकम द मैनेजर ऑफ दिस टेम्पल हियर। तो गौर गोविंद महाराज बोले, प्रभुपाद ही इज लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। तो इनको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, प्रभुपाद को शायद पता नहीं था, इसलिए तो बोले, प्रभुपाद आई एम माई लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो, आई एम लिविंग। प्रभुपाद बोला, टुमारो यू आर लिविंग ना, डोंट वरी, आई विल कैंसल योर फ्लाइट टिकट, इट कैन बी कैंसल्ड। तो वो बोले, बट प्रभुपाद यू नो माई हेल्थ इज नॉट गुड हियर, यू नो आई एम नॉट कीपिंग गुड हेल्थ इन इंडिया, इट्स टू हॉट, नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। प्रभुपाद, डोंट वरी, आई विल टेल यू वॉट टू ईट, वॉट नॉट टू ईट, योर हेल्थ विल बी परफेक्ट, आई विल गिव यू एंटायरली योर डेज रेसिपी, वॉट यू शुड ईट, हाउ यू शुड मेक इट, यू विल बी परफेक्टली हेल्दी। तो एक एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे प्रभुपाद, एक एक आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर रहे थे, उनके रेफ्यूट कर रहे थे। फिर वो कहे, बट प्रभुपाद आई डोंट गेट अलॉन्ग विद द जीबीसी हियर। प्रभुपाद बोले, आई विल चेंज द जीबीसी। अब ये वो एक्सपेक्ट नहीं है, जीबीसी चेंज कर देंगे। फिर वो बोले, बट प्रभुपाद इन न्यूयॉर्क दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मी, दे आर वेटिंग फॉर मी। प्रभुपाद, डोंट वरी, आई विल सेंड समवन एल्स बेटर देन यू फॉर दैट सर्विस, डोंट वरी, यू स्टे हियर। तो एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट उनके काम ही नहीं कर रहे थे प्रभुपाद के सामने, उन्होंने फाइनली अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सोचा कि इसके ऊपर प्रभुपाद क्या मुझे रुकाएंगे यहां पर। तो उन्होंने प्रभुपाद को कह दिया, प्रभुपाद हियर आई एम नॉट एबल टू फिनिश माय 16 राउंड्स, आई एम नॉट एबल टू फिनिश माय 16 राउंड्स, प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, इवन इफ यू डोंट चैंट 16 राउंड्स कृष्णा विल अंडरस्टैंड. अच्छा बाय द वे ये खाली उनके लिए था. अब ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रभुपाद इस हद तक फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और मुझे छूट दे देंगे. तो अब वो क्या बोले, प्रभुपाद ने कहा आई विल चेंज द जीबीसी, इफ यू आर नॉट गेटिंग अलोंग विद द जीबीसी आई विल सेंड समवन एल्स फॉर योर न्यूयॉर्क न्यू डिपार्टमेंट, योर हेल्थ आई विल टेक केयर ऑफ, आई विल टेल यू व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट. And even if you are not able to finish your 16 rounds, don't worry. Manage the place here. Krishna will understand how sincere you are, how dedicated you are, how committed you are. Socho apne spiritual master ke saath disciple arguments samne rakh raha hai ki main kaise कमिटेड नहीं हो सकता. रीजन क्या है, माय प्रेजेंट सिचुएशन, डोंट चेंज माय प्रेजेंट सिचुएशन. सो दिस रीजन आई डोंट वांट माय प्रेजेंट सिचुएशन टू बी अफेक्टेड. तो इसलिए ये जो आप देखो इंडिया में हम लोग अक्सर हर चीज एकदम सेटल तरीके से चाहते हैं कि हाँ भाई हर चीज एकदम मेथोडिकल होना चाहिए. मेथोडिकल मतलब सिक्योर्ड तरीके से होना चाहिए. वेस्ट में क्या है कि उनको कोई चीज पसंद आई. अभी मैं देवामृत महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था तो देवामृत महाराज लेक्चर में कह रहे थे इन द वेस्ट दे लाइक समथिंग दे जस्ट हैव इट फॉर देमसेल्व्स. If they don't like something, they immediately chuck it out from their life. That is West. India, even if you don't like, you keep trying. If you like, you know that it not be so easy to get it. But in the West, so प्रभुपाद टुक एडवांटेज ऑफ दैट. प्रभुपाद ने उनका वो जो मेंटालिटी था, कौन सा मेंटालिटी, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. तो प्रभुपाद ने उनको कहा जस्ट डू दिस, स्टार्ट द टेम्पल, रथ यात्रा, जस्ट डू इट, यस जस्ट डू इट. उनके अंदर वो ऐसा जोश उनको उसमें मिलता था. इंडिया में जस्ट डूइंग इट, स्टिल डूइंग इट, विल डू इट, करेंगे, हमें करना है, हमें देखना है, हम देखेंगे, हम सब मिलके देखेंगे. हमारे नेता भी इस प्रकार से भाषण देते थे. तो एक इस्कॉन के अंदर अभी क्या प्रभुपाद ने इंडिया में ट्राई किया, पहले सब प्रचार वगैरह करना, इंडिया में ट्राई किया, सब लोग हाँ भगवत गीता देखा हुआ, भगवत गीता देखेंगे, देखा हुआ है, कृष्ण है, कृष्ण तो क्या हमारा कान्हा जानते हैं सर, जय श्री कृष्णा बोलते रहते हैं हम. तो प्रभुपाद ने देखा कि कोई भगवत गीता को इसको सीरियसली नहीं ले रहा. तो इस्कॉन के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म, आपको ये पता नहीं होगा, इसको कहते हैं द पिज्जा इफेक्ट. सुना आपने पिज्जा इफेक्ट, नहीं सुना? तो ये पिज्जा इफेक्ट क्या है कि पिज्जा सब जानते हैं ना, पिज्जा, तो पिज्जा जो है वो इटली देश का एक व्यंजन है और इटली में बहुत साल पहले ये पिज्जा जो है वो केवल जो गरीब झोपड़पट्टी के वो लोग खाते थे. इन इटली पिज्जा वॉज फूड फॉर द डाउनट्रोडन, मतलब अगर वो कोई खा रहा है तो मतलब क्या है, पिज्जा खाता है छी, घटिया लोगों का खाना है, घटिया लोगों का खाना था वो पिज्जा, ऐसे उसको माना जाता था। अब जैसे मुझे याद है अब इंडिया में भी आप देखो कि कोई अगर कहे कि पनीर मक्खन वाला मैंने खाया आज, बहुत नाम सुन के लगता है दम है, खाने वाले में दम है, आइटम में भी दम है। जैसे कुछ साल पहले जब एक हमारे यूके के डिवोटी, तो उन्होंने हमें प्रसाद के लिए बुलाया था और उन्होंने एक मैक्सिकन एक डिश बनाई थी, शायद मैक्सिकन है, इंचिलाड़ा उसका नाम सुन के अजीब लग रहा है, इंचिलाड़ा। तो वो नाम अजीब, उसका देखने में अजीब, तो वो क्या था कि एक ऐसे पापड़ी जैसे और उसके अंदर राजमा वजमा भरा हुआ, तो उसको आपको नाइफ और फोर्क के साथ खाना है, वो क्रिस्प पापड़ी उसके अंदर राजमा, उसको नाइफ और फोर्क के साथ उन्होंने ऐसे सजा के दिए, उसको ऐसे ही आप खाओ तो वो सब यहां वहां गिरता रहता है, वो नाइफ और फोर्क तो सवाल ही नहीं। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि इसका सर कहां है, पैर कहां है, पूंछ कहां है, कहां से शुरू करें, इंची लाड़ा सारा इंच एक जैसा ही दिख रहा है इसका। तो मैंने वो होस्ट को पूछा कि भाई ये इसके साथ ही खाने, नहीं नहीं आप जैसे ठीक समझो। तो फिर मैंने क्या किया, उसकी पापड़ी तोड़ी, अंदर से राजमा निकाला, उसको चूरा बनाया भेल की तरह अपना, तो वो लोग सब देख रहे हैं। तो वो लोग ट्राई कर रहे थे अपना अपने विदेशी तरीके से खाने का, वो एक हाथ में वो टिश्यू पेपर लेके, क्योंकि इधर उधर सब वो गिर रहा था उनका राजमा, तो यहां से वो बाइट कर रहे हैं, इधर से गिर रहा राजमा, उधर से कभी वो पापड़ी आती, कभी राजमा नीचे गिर जाता, कभी राजमा आता तो पापड़ी नीचे गिर जाती उनका ही तो। और हमने तो पूरा उसका चूरा बना के वैसे, तो फिर वो होस्ट देखा कि प्रभु जी आप ज्यादा इंजॉय करने लगता है। फिर उसको बता मैं भी ट्राई करूं ऐसा, मतलब करो करो भाई, मेरा भारत महान, लग जाओ। तो वो भी उसका चीर फाड़ कर चूरा बनाया राजमा के अंदर, बाकी उनके बच्चे देख रहे हैं हमारे पिताजी की, फिर वो भी शुरू हुए ऐसा। तो पिज्जा, तो इटली में ये जो पिज्जा है ये सबसे जो घटिया किस्म के लोग वो खाया करते थे, तो उनमें से एक अमेरिका गया, जो पिज्जा खाने वाला कोई ऐसे ही झोपड़पट्टी, इटालियन झोपड़पट्टी वाला, वो अमेरिका गया और उसने अमेरिका में ये पिज्जा को इंट्रोड्यूस किया। तो वहां पर जब उन्होंने देखा तो अमेरिकन्स जो हैं वो हर चीज को एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से उसको प्रेजेंट करते, तो उन्होंने उस पिज्जा को ऐसे प्रेजेंट किया, वो अलग अलग उसके ऊपर टॉपिंग और ये वो बदल के उसको, और अमेरिकन ब्रांड लगा दिया उसको। फिर जब इतना पॉपुलर अमेरिका में ये हुआ, हाँ जैसे अपने इंडिया में है ना पाव भाजी, आप जानते हैं बंबई में पाव भाजी की शुरुआत हुई थी, ये जो मिल में वर्कर काम करते थे, रात को आते थे मिल में काम करने के बाद, तो जो सब्जी मार्केट में बची हुई सब्जियां थी जो बिकती नहीं थी, वो सब्जियों को एक साथ कढ़ाई में डाला और पाव के साथ खाते थे, तो वो लोग खाते थे मिल के वर्कर बची हुई सब्जियों को। फिर उसमें से एक वर्कर ने क्या सोचा कि वो उसको नौकरी से निकाला गया तो उसने सोचा कि मैं इनके लिए ये बना बना के खिलाऊंगा, उसमें से मैं आमदनी कमाऊंगा। तो वो बनाने लगा, उसने अपना एक ठेला लगा लिया, तो वो इतना पॉपुलर होने लगा। अभी तो आप देखो लोग बड़ी बड़ी अपनी मर्सिडीज खड़ी करके ठेलों के बाहर क्या खाते हैं। उसकी शुरुआत कहां से हुई? जो सब्जी मार्केट में बची हुई सब्जियां जो बिकी नहीं उस दिन, वहां से उसकी शुरुआत। तो ये पिज्जा की भी कहानी ये। तो जब अमेरिकन्स इस पिज्जा को इतना आर्टिस्टिक बनाया, प्रेजेंट किया, फिर जब वो इटली में गया तो अरे ये तो सही में बहुत ही एक्सोटिक क्यूजीन है, बन गया है। व्हाई? बिकॉज स्टैम्प्ड बाय अमेरिका। तो इसको कहते हैं पिज्जा इफेक्ट। प्रभुपाद ने भी यही किया। भगवत गीता यहां पर सब लोग कहते हैं क्या है तो बड़े लोगों के लिए है। तो प्रभुपाद कहे ठीक है, भगवत गीता को ले गए अमेरिका में, सब नव युगों को, उनको भगवत गीता दे देकर, उनको भक्त बनाकर, तिलक कंठीमाला शरमणवाकर सैफरन पे वापस इंडिया में सब देखा। अच्छा ये क्या हुआ, किसकी वजह से? भगवत गीता। अच्छा वही हमारी वाली। अब भगवत गीता वॉज अमेरिकन रिटर्न, तब हमने भी सीरियसली लिया। सो दिस इज कॉल्ड द पिज्जा इफेक्ट। और फाइनली वी फियर कमिटमेंट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग न्यू। सो वी फियर एक्सेप्टिंग समथिंग न्यू, वी फियर गिविंग अप अवर सेटल्ड व्यूज, हमारे दक्यानुसी विचार, एंड वी फियर एक्सेप्टिंग समथिंग न्यू एंड बेनिफिशियल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम विस्तार से इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। दैट नाउ वी कम टू द स्टेज ऑफ कमिटमेंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एक्सेप्टेंस। तो हमारे अगले सिटिंग में हम इस टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, कमिटमेंट इन रिगार्ड्स टू एक्सेप्टेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? एक्सेप्टेंस का अर्थ है स्वीकृति। सो दैट वील बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट सिटिंग। जय श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस?
हरे कृष्ण भजे, आपने जो सेवा के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम अपने आप को सेवा से बाद में धीरे धीरे सो कॉल्ड सीनियर होने के बाद दूर चले जाते हैं, तो एक अगर एक ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो जैसे हम भक्ति में आते हैं तो माया की जो कवरिंग है अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय के ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो भक्ति में आने के बाद कुछ समय के बाद हम अपने आप का एक आइडेंटिटी बना लेते हैं और उस आइडेंटिटी को लगते हुए जो उस आइडेंटिटी की सेवा है उसको हम स्वीकार करते हैं, बाकी चीजों से हम दूर रहते हैं। और जब हम श्रवण करते हैं या जो भी सेवा कार्य करते हैं, भक्ति साधना कार्य करते हैं, उसी आइडेंटिटी के साथ करते रहते हैं। और फिर बहुत बार देखा जाता है कि बहुत बार साधना करने के बाद भी और आध्यात्मिक कार्य करने के बाद भी वो जो सो कॉल्ड आइडेंटिटी है, जो कवर्ड आइडेंटिटी है, उसको हम त्याग नहीं कर पाते हैं। आधा सत और आधा असत आइडेंटिटी ऐसा बना के हम जीते और उसे पूरा शुद्धिकरण हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से इस समस्या से हम?
सबसे पहले आइडेंटिटी हमें अपनी नहीं बनानी चाहिए, आइडेंटिटी गुरु हमें देते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र, जैसे एकलव्य ने बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के परमिशन के उसने खुद की आइडेंटिटी बनाई, है ना? तो इसलिए उसको कोई रिकमेंडेशन मिला नहीं द्रोणाचार्य से। तो वैसे ही एकलव्य के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमको खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही, क्या है? प्रभुपाद बोले वी आर अ नोबडी, वी आर अ नॉन एंटिटी. सो गुरु, साधु एंड शास्त्र, दे शुड गिव अस अवर आइडेंटिटी, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. विच मीन्स व्हेन दे आर गिविंग अस, जब वो दीक्षा देते हैं तो हमको, जब वो नाम दे रहे हैं तो वो नाम के साथ हमको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, हमारा, हमारी एक पहचान कि भाई हम दास हैं अब. तो वो आइडेंटिटी जब गुरु से प्राप्त कर हम अपनी भक्ति करेंगे तो वो सबसे सेफ भक्ति है. दैट इज अर्जुन, अदरवाइज वी कम इन द स्कूल ऑफ एकलव्य. सो वी शुड नॉट ट्राई टू क्रिएट अवर ओन आइडेंटिटी. लेट गुरु, साधु एंड शास्त्र, दे डिसाइड अवर आइडेंटिटी. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की,
हिजरे शिक्षाश्रम प्रभु की,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.
हरे कृष्णा को